भारत सरकार ने हाल ही में ई पासपोर्ट लॉन्च किए हैं। ई पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें कागजी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह की जानकारी होती है। इसमें एक RFID चिप और एंटेना लगा होता है जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। ये जानकारी भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in के FAQ सेक्शन से ली गई है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस विषय से जुड़ी अहम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया में बसे ट्रैवल एजेंट नीरव कोटक, जो भारत सरकार के इस ई पासपोर्ट पहल पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
जो अभी इंडिया ने ई पासपोर्ट के कर्मचारी से बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने काफी अच्छा स्टेप लिया है। इनफैक्ट इंडिया वैसे तो काफी कपल ऑफ मे बी अबाउट 2 साल से तो वैसे वो प्लानिंग फेज में था। जो अभी फाइनली सबके सब जितने भी इंडियंस हैं रिजाइडिंग इन इंडिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, उनके लिए रोल आउट करिए, तो ये काफी अच्छा उनका स्टेप है कि जिसमें ट्रैवलर्स विद इन ओवरसीज है या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी सबने पासपोर्ट रखते हैं ट्रैवल के लिए, तो उनके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि जहाँ पे चिप वाला है तो सारी आइडेंटिटी एयरलाइंस को, गवर्नमेंट बॉडीज, जो इमिग्रेशन हो गया या कस्टम्स हो गया, उनके पास सारे एक्सेस होगा टू वेरीफाई द लेजिटिमिटी ऑफ द पर्सन। तो उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का।
नीरव जी, कई बुजुर्ग लोग, खासकर माता पिता, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये ई पासपोर्ट उनके सफर और इमिग्रेशन प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सकता है?
जैसे अगर हम लोग बात करें नॉर्मल पासपोर्ट एंड पासपोर्ट विद द चिप, तो उसमें सच कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल हम लोग ट्रैवलर कैटेगरी की बात करें, भले वो ओल्ड एज ट्रैवलर है या यंग वन है या फैमिली है या जो भी है, तो उससे सच कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो सेम ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। डिफरेंस एक ये है कि बिकॉज उसमें चिप है, चिप एंड एंटेना, जो हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं वैसे, कि जहाँ पे सारा आपका डेटा RFID टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो जिसमें से सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट विच इज द गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है कि कौन पर्सन है। बट आप नॉर्मल पासपोर्ट लेके जाते हो या पासपोर्ट विद द चिप, उससे ट्रैवल में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कहीं कोई भी जगह पे इम्पैक्ट नहीं होता है।
नीरव कोटक जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको ई पासपोर्ट से जुड़े एक ज़रूरी सवाल का जवाब देते चलें। और वो सवाल ये है कि क्या मौजूदा वैध पासपोर्ट धारकों के लिए अपने पुराने पासपोर्ट को ई पासपोर्ट से बदलना अनिवार्य है? इस सवाल का जवाब आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in के FAQ सेक्शन में मिलेगा, जहाँ लिखा है, नहीं, भारत सरकार द्वारा जारी सभी पासपोर्ट उनकी वैधता की समाप्ति तिथि तक मान्य रहेंगे। जैसे ही संबंधित पासपोर्ट कार्यालय ई पासपोर्ट जारी करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होगा, उस कार्यालय के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ई पासपोर्ट मिलेगा। भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में ई पासपोर्ट शुरू होने में कुछ महीने लग सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं नीरव कोटक जी के पास और उनसे पूछते हैं अगला सवाल। अच्छा, जब किसी चीज़ का डिजिटलाइजेशन होता है तो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी सामने आती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जैसे अगर हम लोग उसको जनरलाइज करें, तो जहाँ जहाँ पे भी डिजिटल है, जो भी चीज़ डिजिटल ने सबके लिए अच्छा किया है, तो वहाँ पे उसकी डार्कर साइड भी है। तो कितनी डार्कर साइड है वो तो जनरली लोग, ये सारी टेक्नोलॉजी वैसे तो फुल प्रूफ होती है गवर्नमेंट के साइड से, उसके हिसाब से। तो अब मेरा मानना ऐसा है कि इंडिया पहली कंट्री नहीं है जो चिप वाले पासपोर्ट पे, RFID पासपोर्ट या टेक्नोलॉजी पे पासपोर्ट इश्यू करने वाली है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में, जैसे US है, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग वैसे 2005-2006 के करीबन से डिजिटल ई पासपोर्ट जो हम लोग बोलते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी कंसर्न एज मच नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि ऐसे पासपोर्ट के केस में अगर किसी डैमेज हो गया समथिंग, तो वो वाले केस में आपको कॉस्ट वापस लग सकती है, तो उसका जनरली ध्यान रखना बेटर है। बट जनरली स्पीकिंग कुछ इश्यूज नहीं होना चाहिए, एंड उसी के ऊपर गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट होगी, उसके ऊपर तो उन्होंने सबसे पहले ही सोच करके ही बाद में टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया होगा।
जी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कई सालों से चिप वाले ई पासपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उस अनुभव से कुछ अहम बातें या फिर कोई सीख सामने आई है?
लुक, स्टेप जो गवर्नमेंट का है वो काफी अच्छा है, और जैसा आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग कितने टाइम से यूज कर ही रहे हैं, हर एक चीज के साथ, बिकॉज इंडिया के केस में भी ऐसा हो सकता है कि उनका भी नए फेज में जा रहा है पासपोर्ट, राइट? अगर आप जैसे बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे हर जगह पे बोलते हैं कि टीजिंग इश्यूज, तो शायद वैसा कुछ आएगा टिल द टाइम के सब लोग वो पासपोर्ट, सारी बॉडीज जहाँ पे वो कंप्लीट यूजेज के हिसाब से फेमिलियर ना हो जाए, तब तक जैसे हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इवन आज की तारीख में सर्टेन एज ग्रुप से नीचे ई पासपोर्ट यूज नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको इमिग्रेशन में लाइनअप क्यू अप करना ही पड़ता है। तो वैसी सारी चीजें थोड़ा मे बी 1-2 साल, 6 महीना या उससे ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट इवेंचुअली जो स्टेप है वो काफी स्मूथर ट्रैवल प्रोसेस के लिए है। तो आई वुड थिंक कि इसका अडॉप्शन जो है इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफी बेहतर होगा, एंड उससे सबकी लाइफ थोड़ी तो डेफिनेटली आसान होगी ही होगी।
ये थे नीरव कोटक, ऑस्ट्रेलिया में बसे एक ट्रैवल एजेंट, जिन्होंने आज हमसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ई पासपोर्ट से जुड़े कुछ पहलुओं पर बात की। SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी नबील हसन ने।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।